फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 फील गुड फील लाइव। मैं हूं भावना
और मैं हूं आंचल।
और आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेंद्र बैंस। और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, डॉक्टर नरेंद्र मेडिकल ऑफिसर हैं बीके हॉस्पिटल में।
मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
शुक्रिया।
मैम आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस के बारे में और एडोलेसेंस की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन सबसे पहले आज हम जैसे बात करने वाले हैं एडोलेसेंस की प्रॉब्लम के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को पहले बताएं कि एडोलेसेंस की परफेक्ट एज क्या होती है, किस एज के लोगों को हम एडोलेसेंस बुलाते हैं।
मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि एडोलेसेंट वो एज है जिसको हम टीनेजर कहते हैं, जिसमें शारीरिक विकास शुरू होता है। एग्जैक्टली 10 साल से 18 साल इस एज ग्रुप को एडोलेसेंट एज ग्रुप कहा जाता है।
जी
चलिए डॉक्टर नरेंद्र, आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि वो क्या ऐसी चेंजेस हैं जो किशोरावस्था में या एडोलेसेंस में होती हैं।
किशोरावस्था में बेसिकली तीन तरह के चेंजेस होते हैं। जब हम कहते हैं कि चाइल्डहुड से बच्चा किशोरावस्था में आ गया है, उसमें नंबर एक बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पर उसका विकास होना शुरू हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, बॉडी पे गुप्तांगों के आसपास बालों का उगना, ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे अहम है बायोलॉजिकल चेंजेस में कि उसको मंथली साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। किशोरावस्था की लड़कियों को जो सबसे बड़ा चेंज है वो मंथली साइकिल्स पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हिंदी में हम मासिक धर्म भी कहते हैं और इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इसको बोला जाता है।
जी।
दूसरी तरह के चेंजेस हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें मेंटल ग्रोथ होती है, बच्चों के मूड स्विंग्स करते हैं, उनमें इमोशनल चेंजेस आती हैं। और एक तीसरी तरह की है कि बच्चे इंडिपेंडेंट फील करना शुरू कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये तीन तरह के चेंजेस जब बच्चे में दिखाई देने लगे तो हम कहते हैं ये बच्चे 10 साल से 18 साल की उम्र के किशोरावस्था में आते हैं,
ये एडोलेसेंट हो गए। जी
मैम, आपने बायोलॉजिकल चेंज में एक चेंज मेंशन किया मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ये हर मंथ जो होती है, लेकिन मैम व्हाट्स द परफेक्ट एज ऑफ दिस साइकिल?
द परफेक्ट एज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज 11 टू 15 इयर्स। इस बीच में आमतौर पर किशोरावस्था में लड़कियों को स्टार्ट हो जाते हैं मंथली पीरियड्स।
डॉक्टर नरेंद्र, आपने हमें बताया कि 11 से 15 साल की उम्र बिल्कुल नॉर्मल एज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, लेकिन मान लीजिए कि किसी को या तो 15 साल तक नहीं होता है या 11 से पहले हो जाता है, तो क्या ये एक एबनॉर्मेलिटी है?
बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। किसी भी अगर बच्चे को 10 साल से पहले पीरियड स्टार्ट हो गया या 15 साल तक नहीं आया, तो ये पेरेंट्स को ज़रूर बच्चे को डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए ले जाना चाहिए कारण जानने के लिए। अगर 10 साल के बच्चे को पीरियड्स आ गए पहले ही, यूजली क्या होता है, इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बार अगर पीरियड्स आ गए और उसके बाद स्टॉप हो गए, फिर तो इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता। उसके बाद अपने आप 13 या 14 साल पे बच्चे को रेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं है और 10 साल के बाद रेगुलर उसको पीरियड्स आने लग गए हैं, तो ये वाकई चिंता का विषय है। इसका कारण जानने के लिए ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर 15 साल के बच्चे को पीरियड्स नहीं आए, ये भी उतना ही चिंता का विषय है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चे को दिखाने के लिए ज़रूर जाना चाहिए कारण जानने के लिए, क्या बच्चे के डेवलपमेंट उसके ऑर्गन्स अंदर बने हैं या नहीं बने हैं, या जो भी कारण है वो गायनेकोलॉजिस्ट जांच के बाद ही बता सकते हैं। तो माँ बाप को ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
जी, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट एज होती है ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जब बच्चे की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। पर मैम नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मल पीरियड्स को हम गिनते हैं अगर जो साइकिल है 3 से 7 दिन तक बच्चे को ब्लीडिंग होती है, और अगर 25 दिन से 35 दिन के बीच में रिपीट होती है, और एक दिन में बच्चा 2 से 4 पैड्स के बीच में इस्तेमाल करता है
जी,
और थोड़ा सा उसको दर्द या क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं लोअर एब्डोमेन में फील होते हैं, तो ये एक नॉर्मल
सिम्टम्स
हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़रा भी ऊपर या नीचे हो, बच्चे को पीरियड्स ज़्यादा आएँ, हैवी आएँ, बच्चा पैड्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ये एक चिंता का विषय होता है। अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
आपने जैसे बताया कि ज़्यादा हैवी पीरियड्स आना तो एक चिंता का विषय है, कम होना भी एक चिंता का विषय?
बिल्कुल, कम होना भी उतना ही चिंता का विषय है। शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके कारण से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पीरियड्स कम आते हैं। जैसे सबसे पहले हम कह ही देते हैं कि उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता, ग्रोथ ही नहीं होती है। कारण सारे हॉर्मोन्स और देर बहुत सारे बॉडी में ऐसे कारण्स हैं जिनके कारणों से ये इस तरह के चेंजेस आते हैं, पीरियड्स कम आना या ज़्यादा होना, ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद।
क्या वीकनेस भी इनका एक कारण हो सकता है?
बिल्कुल, आजकल जैसे डाइटिंग का बहुत रिवाज है, बच्चों को किशोरावस्था में बहुत फिगर मेंटेन करने के लिए बच्चे तैयार रहते हैं, खाना ही नहीं खाते, दूध नहीं पीना, एक बैलेंस्ड डाइट एक वर्ड है जैसे, वो बिल्कुल नहीं खा लेते हैं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि कम से कम 1600 से 2000 कैलोरीज तक एक एडोलेसेंट को चाहिए होती है बच्चे को, और ड्यूरिंग द पीरियड क्योंकि ब्लीडिंग ब्लड लॉस होता है बॉडी में से, इस वक्त ये डाइट उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, कैलोरीज 22,000 तक उसको लेना चाहिए। जिसके लिए माँ बाप को मैं स्पेशल एक संदेश देना चाहती हूँ, माओं को स्पेशली, कि इस टाइम पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें खाने पीने का। जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जिस भी एज में आपके बच्चे को पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तब से डाइट का ज़्यादा ध्यान रखने से उसका आधा समस्याओं का हल घर पर ही हो जाएगा। एक, उससे बात करें, ठीक से उसे समझाएं, उसको मेंटली प्रिपेयर करें पहले पीरियड स्टार्ट होने से पहले, या उसमें जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ उसकी हो रही है, बच्चे को एक्सप्लेन करें ताकि उसको आगे जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो।
बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
हाँ, बिल्कुल, वो सपोर्ट खाली, क्योंकि आजकल पहले तो बहुत बड़े बड़े
जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं।
न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं, इस वजह से बच्चों के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, या बड़ी बहन या माँ, सबसे ज़्यादा माँ का रोल हो जाता है ऐसी अवस्था में, कि वो बच्चे को पूरा सपोर्ट दे, उसको समझाए, उसको एक्सप्लेन करे कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, और उसका डाइट, उसका खुराक, हर चीज़ का उसका ध्यान रखें।
जी तो मैम, आपसे मैं एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जो किशोर अवस्था की लड़कियाँ होती हैं उनको एक मेजर प्रॉब्लम और आजकल काफ़ी रहती है क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है, वो है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का मेन कारण, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डाइट, बैलेंस डाइट अगर खाते हैं बच्चे, ऐसी समस्या कम आती है। इररेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण हैं, अगर वाकई उसको अगर 10 या 5 दिन का फर्क आता है तो इतना चिंता का विषय नहीं है, हर महीने पीरियड आता है तो ठीक है
जी।
अगर उसको 2-3 महीने का गैप आके पीरियड्स आता है, उसको क्रैम्प्स आते हैं जिसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं, ज़्यादा दर्द महसूस करता है बच्चा पीरियड्स के टाइम में, पीरियड से पहले उल्टियाँ करनी शुरू कर देता है, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कहते हैं, एक हमारा एक सिंड्रोम है जिसको हम ये नाम देते हैं। इसमें बच्चे को पहले से, जैसे हम कह रहे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसको टेंशन होता है, तो उसमें दर्द ज़्यादा होना, उल्टियाँ आना, भूख नहीं लगना, ये सारी समस्याएं उसको,
और कई बार चिड़चिड़ापन होना,
हाँ जी, ये सारे हॉर्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसका कुछ एक उपचार तो डाइट से हो जाता है, इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स देते हैं, माँ देती है, तो उसका समस्या का हल हो जाता है। अगर समस्या बढ़ गई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए।
डॉक्टर नरेंद्र, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए, जैसे आपने कहा है कि डाइट सबसे बड़ा फैक्टर है, तो ऐसा क्या वो अपनी डाइट में बढ़ाएं इस टाइम पर कि वो इससे ओवरकम कर सकें या इससे बाहर आ सकें? कई बार हमें देखिए, हमें लगता है हमने एक चपाती खा ली है या हमने दाल खा ली है, हमने बहुत न्यूट्रिशन ले लिया, या रादर हम कहते हैं एक ग्लास दूध पी लिया तो हमारा सारा कैल्शियम की कमी पूरी हो गई है, पर ऐसी क्या चीज़ें हैं?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इस वक्त पीरियड्स के टाइम में स्पेशली, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो जाता है बच्चे का, तो मेजर कारण है कि उसको खून की कमी आ सकती है। खून की कमी जो है वो कैसे पूरी कर जा सकती है? हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को बोलें, सैलेड्स खाने को बोलें, और हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोलें। अगर वो एक गिलास दूध पीती है तो उसको इस वक्त 1.5 गिलास कम से कम कर देना चाहिए। अगर वो 1 कटोरी दाल खाती हैं तो उसको 2 कटोरी दाल कर देनी चाहिए इस वक्त। चपाती जितना वो खाती हैं उतना ही खाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स अगर सैलड्स खाएंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी।
जी मैम, ये तो बात हो गई डाइट की, लेकिन एक्सरसाइज के बारे में क्या विचार है? क्योंकि कई बार होता है कि लड़कियों के दिमाग में एक माइंड सेटअप है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल्स एंड ड्यूरिंग साइकिल्स उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज करनी चाहिए तो कितनी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए इन दिनों में?
नॉर्मल रूटीन में भी एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो वाकई इंसान को फिट रखती है। नॉर्मल रूटीन में एक एडोलेसेंट बच्चे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन विगरस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए जो ज़्यादा फोर्स लगे,
जैसे रनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए।
हाँ, बहुत ज़्यादा रनिंग या वो नहीं, जो नॉर्मल रूटीन योगा एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये
डॉक्टर साहब, क्या वॉक पे जाना अलाउड है ऐसे टाइम पे?
बिल्कुल जा सकते हैं।
जो कितनी अवधि होनी चाहिए, मान लीजिए कि अगर आधे घंटे आप वॉक कर सकते हैं इजीली,
तो
ऐसा हमें करना चाहिए?
आधा घंटे से 1 घंटे तक बिल्कुल आराम से कर सकते, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
जी मैम, इसमें लड़कियां ना एक चीज को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हैं और काफी तकलीफ भी होती है जब इन दिनों में उनके फेस पे पिंपल्स निकलाते हैं, दाने निकलाते हैं, साथ ही उनके काफी पेन भी होता है, बैक में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है या स्टमक में पेन होता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं?
जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं।
जी,
इसमें पिंपल्स होना क्या है कि इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो स्किन में एक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल ज़्यादा सेक्रेट करने लग जाते हैं जो ऊपर स्किन पे आने लगते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। ये ज़्यादातर पीरियड शुरू होने से पहले होते हैं। अगर बहुत कम है तो कोई बात नहीं, आप होममेड रेमेडीज जो भी है वो घर पे उसको
जैसे बेसन लगा लिया,
बेसन या
कोई बहुत ज्यादा अगर एक्ने की क्रीम व्रीम का इस्तेमाल ना किया जाए।
नहीं नहीं, अगर पस वाले आपको पिंपल्स होने लगे हैं और बहुत ज्यादा होने लगे हैं तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको, जैसे आपने कहा ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, तो आपके पीरियड स्टार्ट होने से पहले तो आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, पर पीरियड्स खत्म होने तक या होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं?
हाँ।
तो अगर हम इसके लिए कोई खास ज्यादा मेडिकेशन ना करें तो क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है?
बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए ज्यादा मेडिसिन या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप होममेड रेमेडीज उसको इस्तेमाल कीजिए,
चेहरे को बार बार धोया जा सकता है,
बार बार धोइए, बैलेंस डाइट खाएंगे। मैं बार बार इस बात पे तवज्जो कर रही हूँ कि आप बैलेंस्ड डाइट मतलब एक खुराक अपनी अच्छी रखेंगे, उससे सभी समस्याओं।
एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जनरली हमने सुना है कि जब पीरियड्स होते हैं तो लड़कियों को बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए, जैसे दूध है या कोई भी ऐसी चीज है, तो क्या ये जरूरी है?
लिक्विड डाइट मतलब
ज्यादा होनी चाहिए?
नहीं, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। डाइट आपको बताया कि इस वक्त मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान नियरली 2200 कैलोरीज होनी चाहिए, विच इंक्लूड्स फ्लूइड, आपका फ्रूट्स, लिक्विड, सॉलिड, सब कुछ इंक्लूड करता है उसमें। इसमें ये जो मिथ है कि हाँ क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए उससे वो पूर्ति हो जाएगी अंदर की, ये बिल्कुल गलत मिथ है। जब तक आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेंगी, जब तक आप दालें नहीं लेंगी, पूरी बैलेंस डाइट नहीं लेंगी, वो खून की कमी है वो पूरी नहीं होगी।
आप सोचिए कि पानी घी भी खिलाती हैं इस टाइम की, भाई
आयरन हमें ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारी खून की पूरी पूर्ति होती है।
हाँ, आयरन ये है, गुड़ में जैसे बहुत आयरन है, अगर आपको लेना है, अगर उसके बाद भी आपका HB अगर आप कराते हैं, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर आपका 9 या 10 से कम आता है तो आपको डेफिनेटली एक आयरन टॉनिक या कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लेना चाहिए।
तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट अबाउट द पेन्स जो ड्यूरिंग हमारे मेंस्ट्रुअल जो पेन्स होते हैं, काफी लड़कियां होती हैं कि उनसे पेन जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, फिर वो मेडिसिंस लेती हैं, पेन रिलीफ लेती हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें ये दवाइयां खानी चाहिए या फिर अगर नहीं खानी चाहिए तो इसका क्या अल्टरनेटिव है?
ये भी एक वजह है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जो कहते हैं हम, ज़्यादातर पीरियड स्टार्ट होने से पहले दर्द ज़्यादा होता है।
जी।
जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो
जाता
है,
पहले या दूसरे दिन ज़्यादा रहता है और
हाँ,
उसके
बाद धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लो होता जाता है वो कम होता जाता है। इसके लिए स्टार्टिंग में आप मेडिसिन ले सकते हैं, पेन किलर, ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत एक्सेस है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और उसके साथ उसको हो रहा है और हर बार बढ़ता जा रहा है तो इसका कारण जानने के लिए डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करें।
कितने पेन किलर्स लेना नॉर्मल है, मान लीजिए पूरे दिन के ड्यूरेशन में, 24 घंटे में?
वो हर एक मेडिसिन की अपनी डोज होती है, जैसे एक
स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है पेन किलर।
हाँ, कोई कोई ऐसे पेन किलर्स हैं जो एक ही टेबलेट काफी होता है पूरा दिन,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल भी इस समय,
बहुत ज्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। वो जो एक स्पाज्म है उसमें एक नॉर्मल बच्चे सारे मेफ्टल स्पाज्म करके जो एक मेडिसिन के आती है ये लेते हैं, वो दिन में 3 दफा ले सकते हैं, बट अवॉइड करना चाहिए। अनलेस आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कारण जाने, तब तक नहीं लेनी चाहिए।
जी,
एक और कारण जो इस उम्र में, इस किशोरावस्था में लड़कियों को होता है वो है हैवी ब्लीडिंग। ये कैसे होता है और इससे कैसे बचना चाहिए?
अगर दो से चार पैड जैसे कि मैंने बताया एक नॉर्मल फ्लो इतना आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, उसको 6-8 पैड्स यूज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम कहते हैं कि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है
जी।
तो ये एक समस्या का कारण है। इसका कारण जानने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हार्मोनल कारण हैं, अंदर शरीर में भी कोई ग्रोथ ना हो या कोई और कारण, जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस के बिना नहीं बता सकते।
एक और कारण होता है कि पहले या दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है लेकिन तीसरे चौथे दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो क्या ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का पीरियड हम कहते हैं नॉर्मल है। अगर एक ही दिन आया और एक ही पैड इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं कि बहुत कम पीरियड्स हैं। ये समस्या का कारण है, इसके लिए ज़रूर जांच करानी चाहिए। पर अगर 2 दिन हैवी ब्लीडिंग हो गया, 3rd दिन तक स्टॉप हो गया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो यहाँ मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि अगर कभी भी कोई भी परेशानी ऐसी आती है तो हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने से झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी ही नॉर्मल सी बात है।
बिल्कुल मैम, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे जो मेंस्ट्रुअल्स इरेगुलर होते हैं, कई बार उनका कारण होता है थायराइड, क्या सिर्फ ये एक ही ऐसा कारण है या फिर ये इट्स वन ऑफ द रीजंस?
नहीं, इट्स वन ऑफ द रीजंस। हमारे देश में सबसे ज्यादा थायराइड तो हम इसलिए कह देते हैं कि हॉर्मोन्स हैं, ये ही एक ग्लैंड है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है
जी।
डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जिसमें मेन जो है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो वन ऑफ मेजर रीजंस के बच्चों को कम पीरियड्स हो गए या स्टॉप भी हो जाते हैं
जी।
तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये सब इरेगुलरिटीज आती हैं, इसके लिए ज़रूर अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए
जी। आई थिंक ऐसे में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए अगर आपको इरेगुलर हैं या बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं।
एक और प्रॉब्लम आती है वाइट डिस्चार्ज की, आप ये हमारे लिसनर्स को बताइए कि क्यों होता है?
देखो, वाइट डिस्चार्ज 2 पीरियड्स के बीच में अगर होता है या मिड साइकिल जिसको हम कहते हैं पीरियड के बीच के दिनों में अगर होता है, उस वक्त ओव्यूलेशन होती है, उस वक्त अगर थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है, वो वाइट है, उसमें स्मेल नहीं है, तो ये नॉर्मल और हेल्दी रीज़न है। इसके लिए घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यही इचिंग होती है आपको, बर्निंग होती है आपको, या इसमें स्मेल आने लगी है, उसका कलर चेंज हो गया है, वो येलो हो गया है, ग्रीन हो गया है, या ब्लड मिक्स्ड हो गया है, तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, इसके लिए जांच और मेडिकेशन की ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर को।
तो मैम, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
इससे आजकल आपने सुना ही है कि बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एड्स, HIV, ये सारी जो डिजीज़ हैं, अगर ये पहले नॉर्मल लेवल पे छोटा इन्फेक्शन नहीं ट्रीट किया हुआ, ज़्यादातर घरों में क्या होता है, बच्चे इस एज की उम्र के लड़कियां झिझकती हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताती, डॉक्टर के पास जाने से शर्माती हैं, इस बारे में बात करने में घबराती हैं, हिचकिचाती हैं। लेकिन मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है उनके मन में, कोई भी शंका है, वो ज़रूर जाके डॉक्टर से बात करें, माँ बाप
से, बहन से, दोस्त से, किसी ना किसी से
शेयर करें, बात करें और इसका हल ढूंढें। अगर वाकई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज टाइम रहते करा लो, नहीं तो बढ़ के ये इतना बढ़ जाता है कि किसी भी मेजर डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि जिन भी घरों में माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते पैड्स वगैरह, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह बच्चों के लिए, जहाँ नहीं कर सकते वो बिल्कुल कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं बच्चियाँ, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि कपड़ा सूती होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और एक बार धूप ज़रूर लगी होनी चाहिए, बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना सफाई का ध्यान रखेंगी तो ये जो हम इन्फेक्शन्स या वाइट डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगी उनको। और अगर सैनिटरी नैपकिन्स माँ बाप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं वो तो बहुत ही बेहतर है।
उसमें भी हाइजीन की ज़रूरत है,
उसमें हाइजीन का यही है कि सबके लिए ही वैसे तो इम्पॉर्टेंट है कि जितनी बार भी टॉयलेट जाएं वो अपना ठीक से वॉश और क्लीन ज़रूर करें हर बार, और हाथ भी, जैसा कि हर बार बताया जाता है, कई बीमारियों से बचने के लिए हमेशा ही कहते हैं बाहर से आएंगे या कोई भी चीज़ काम करने से पहले हाथ बार बार धोएं,
तो नहाएं, साफ रहें,
अपना डाइट बैलेंस लेंगे तो ऐसी समस्याओं से वो बच सकते हैं
जी।
एक और प्रॉब्लम आती है इस उम्र में, इस एज में ऑपोजिट सेक्स के प्रति काफी अट्रैक्शन होता है, क्या ये नॉर्मल है?
जैसे जैसे बच्चे में ग्रोथ फिजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, जैसे उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, इसी तरीके से उसकी मेंटल ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है
जी।
अगर वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है या सोचना शुरू करता है तो ये एक नॉर्मल चेंज है, लेकिन इसमें माँ बाप को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि वो उनको ये समझा पाएं कि इन सब चीज़ों के लिए अभी उन्हें और मैच्योर होना है, वो उन्हें टाइमली हर बात में डिफरेंस बता पाएं, ये एक नॉर्मल बात है, बजाय उसके कि बच्चों को डांटो और ये करो कि तुमने ऐसा सोचा, उसको समझा पाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसके ठीक से उसकी काउंसलिंग करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अपना किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मिल के उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि ये उसको नॉर्मल है, लेकिन उसको कब कोई डिसीजन या लेना है उसके लिए उसको थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए,
रादर उन्हें एक हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए कहना चाहिए।
हाँ
बिल्कुल, उन्हें क्या ज्यादा अपने पेरेंट्स से हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए,
ये ज्यादा
फ्रेंडशिप होनी चाहिए,
ये ज्यादा हेल्प करेगा इसमें, ये कि आजकल माँ बाप बच्चों को डांटना शुरू कर दें वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हॉर्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह से वो उसको ये सारे चेंजेस आते हैं, ये उनको समझना चाहिए।
मैम मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे रेडियो मानव रचना के श्रोताओं को या लिसनर्स को कुछ भी संदेश देना चाहती हैं तो?
हाँ बिल्कुल, मैं रेडियो मानव रचना के सभी लिसनर्स को और किशोरियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी उनको किसी भी तरह की समस्या है वो अपने माँ से या किसी से बातचीत करके उसका समाधान ढूंढें, खाने में बैलेंस डाइट खाएं, जंक फूड ना खाएं, व्यायाम करें और बाकी अपना हाइजीन मेंटेन रखें,
अपना पूरा ख्याल रखें
बस अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ।
मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का और हमारे साथ जो है एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स को और एडोलेसेंस की जितनी भी उनकी क्वेरीज हैं मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होंगी उनके बारे में बताने के लिए।
शुक्रिया, मैं भी आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद।
और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइफ।